हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 9 श्लोक संख्या 1 और 2। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो नमस्ते स्पृशभाय सात्वतां दुर्विदुरकाष्ठाय मुहुर्कुयोगिनां निरस्तसाम्यां दिशये नराधसा स्वधामनि ब्रह्मणिरोऽस्यते मम। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यत्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सत्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रा श्रवसि नमो नमः। किरात हूणा द्रपुलिंद्र कुलकशा आभीर शुंभा यवनाख सादया येनी च पापा यदपाशयाशया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। प्रचोदिताये न पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रा धुरभूत् किलास्यत समीरिषीणा ऋषभा प्रसीदता भूतैर्महद्भि य इमा पुरो विभु निर्मायशीति यदमूषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणांशो दशषोडशात्मक सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय विधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्यं यन्मुखं बुरुहासवं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिके। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंद अध्याय नौ, जिसका शीर्षक है श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों का उत्तर, मतलब जो अभी चैप्टर नंबर 8 में परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न किए हैं, अब भगवान का उदाहरण देते हुए सुखदेव गोस्वामी उन प्रश्नों का उत्तर देंगे। और पहला श्लोक बहुत ही सुंदर तरीके से सुखदेव गोस्वामी उत्तर देना प्रारंभ कर रहे हैं। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। श्री शुक उवाच आत्ममायामृतिराजन् परस्यानुभवात्मनः न घटितार्थसम्बन्धः स्वप्नद्रष्टुरिवाञ्जसा आत्ममायामृतिराजन् परस्यानुभवात्मनः न घटितार्थसम्बन्धः स्वप्नदृष्टुरिवाञ्जसा आत्ममायामृतिराजन् परस्यानुभवात्मनः न घटितार्थसम्बन्धः स्वप्नदृष्टुरिवाञ्जसा आत्ममायामृते। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, श्री सुखदेव वाच आत्मा, आत्मा मतलब भगवान, माया मना शक्ति, भगवान की शक्ति रिते, रिते मना बिना, राजन हे राजन, भगवान की शक्ति के बिना परस्यानु भवात्मना, परस्य मना शुद्ध आत्मा का अनुभव, आत्मना मना विशुद्ध रूप से चेतन का न घटेत, न मना कभी नहीं घटेत, मना इस प्रकार घटित होता है। अर्थ, अर्थ का मतलब होता है अभिप्राय, और संबंध मतलब भौतिक शरीर के साथ संबंध, वो कैसा है, स्वप्न दृष्टुर इवन जसा, स्वप्न मना स्वप्ने में, दृष्टु मना देखने वाले का, इव मना सदृश या उसकी तरह, अंजसा मना पूर्ण तरह। बहुत ही सुंदर उत्तर दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के प्रश्न का, कि सुखदेव गोस्वामी ने पूछा था 8.7 में, यदधातु मतो ब्रह्म देहारम्भोस्य धातुभिः यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा, कि हे विद्वान ब्रह्म, दिव्य आत्मा भौतिक देह से पृथक है, तो फिर क्या उसे अकस्मात ही देह प्राप्त हो जाता या किसी कारणवश, आपको यह ज्ञात है, अतः आप कृपा करके मुझे बताएं कि जीव आत्मा जब शुद्ध है, भगवान का ही अंश है, जब वो भौतिक देह से बिल्कुल पृथक है, तो उसे आखिर देह के अंदर डाला क्यों जाता है, उसका कारण पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी उसका उत्तर देते हैं, अनुवाद देखिए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब तक मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति से प्रभावित नहीं होता, तब तक भौतिक शरीर के साथ शुद्ध चेतना में शुद्ध आत्मा के संबंध कोई अर्थ नहीं होता। यानी कि भगवान के साथ जब तक जीव का संबंध हो नहीं जाता है, जब तक वो भगवान की शक्ति से प्रभावित नहीं होता, तब तक वो इसी भौतिक शरीर में बार 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 आता जाता रहता है, और जब तक उसकी चेतना शुद्ध नहीं होती है, शुद्ध चेतना में शुद्ध आत्मा के संबंध, वो जो भगवान के साथ जो संबंध है, वो तो जब जी एकदम शुद्ध हो जाएगा, जब उसको अपने रियलिटी का पता लग जाएगा ना, फिर वो भगवान के साथ अपने संबंध को निर्माण करने का प्रयास भी करेगा। तब तक तो वो अपने आप को शरीर समझता, क्योंकि भगवान की बहिरंगा शक्ति भी तो है, वो भी तो बहिरंगा शक्ति भी तो अपनी ओर आकर्षित करती है। तो जब तक जीव बहिरंगा शक्ति की ओर आकर्षित होगा, तब तक वो अपनी शुद्ध चेतना में भगवान के साथ शुद्ध संबंध निर्माण कर ही नहीं सकता। तब तक तो क्योंकि वो अपने आप को ये शरीर ही समझता है, तो उसके लिए यहाँ बता रहे हैं कि स्वप्न दृष्टु रिवांजसा, यानी ऐसा संबंध स्वप्न देखने वाले द्वारा अपने ही शरीर को कार्य करते हुए देखने के समान है। कि सपने में हम कैसे देखते हैं, हमारा शरीर ही कोई कार्य कर रहा, लेकिन हम कैसे दूर होते हैं, हम तो रियल में यहाँ पर सो रहे होते हैं, लेकिन दिख रहा होता है कि वो कार्य कर रहा होता है। बहुत ही सुंदर तरीके से श्रीला प्रभुपाद जी इसको हमें समझाएंगे। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते महाराजा परीक्षित के इस प्रश्न का कि भौतिक देह यथा मन से पृथक होते हुए भी जीव आत्मा ने किस प्रकार भौतिक जीवन प्रारंभ किया, यहाँ पर सही सही उत्तर दिया गया है। आत्मा जीवन के भौतिक बोध से पृथक है, किंतु भगवान की बहिरंगा शक्ति जिसे आत्म माया कहते हैं, उसके द्वारा प्रभावित होने से वह ऐसे भौतिक बोध से में लीन रहता है। क्यों लीन रहता है? क्योंकि वो बहिरंगा शक्ति से प्रभावित होता है। यदि वो भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रभावित हो जाएगा तो उसे इस भौतिक जगत भौतिक बोध में लीन नहीं रहना पड़ेगा फिर, क्योंकि वो अपने आध्यात्मिक स्वरूप को पहचानने लगेगा। अभी वो अपने आप को क्या सोचता है कि मैं ये शरीर हूँ, तो इसी के कारण वो शरीर के रिलेटेड चीजों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से आसक्त रहता है, तो उसी के कारण उसको जन्म लेना पड़ता है। इसकी व्याख्या प्रथम अध्याय में व्यासदेव द्वारा भगवान के साक्षात तथा उनकी बहिरंगा शक्ति के प्रसंग में पहले ही की जा चुकी है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ये बात तो अब तक समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि बार बार इसकी व्याख्या होती है। तो आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं बहिरंगा शक्ति का नियंत्रण भगवान द्वारा होता है और जीव आत्माएं भगवान की इच्छा द्वारा इस बहिरंगा शक्ति से नियंत्रित होती है। अब यहाँ पर एक और बात बहुत ही सुंदर श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो बहिरंगा शक्ति, उसका भी नियंत्रण, उसका भी कंट्रोल कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। भगवान कहते हैं ना मैया दक्षिण प्रकृति, और भगवान की इच्छा द्वारा इस बहिरंगा शक्ति से नियंत्रित होती है कौन? जीव आत्मा। जीव आत्माओं को यदि ये बहिरंगा शक्ति भी नियंत्रण कर रही है तो भी इच्छा किसकी है? भगवान की है। और इसका कारण क्या है कि भगवान क्यों ऐसी इच्छा कर रहे हैं? क्योंकि जीव आत्मा जो है वो अपने स्वरूप को भूल जाती है और वो भगवान की शरण में नहीं आती है। तभी या तो जीव आत्मा जो है वो कभी स्वतंत्र नहीं रह सकती, या तो भगवान की शरण में जाएगी या तो माया की शरण में जाएगी। मतलब माया या मायापति, दोनों में से एक के कंट्रोल में ही जीव आत्मा को रहना पड़ेगा। और एक बात याद रखिए कि जब तक जीव पूर्ण रूपेण भगवान की शरण में नहीं चला जाता है, तब तक माया उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। माया बार बार उसको थपेड़, जो भौतिक जगत के ये जो कष्ट है उनमें लाती रहेगी, खींचती रहेगी, घसीटती रहेगी। इसलिए सिर्फ एक ही तरीका है इस बहिरंगा शक्ति से बचने का। भगवान कहते तुम अपनी शक्ति से नहीं पार कर सकोगे, मम माया दूरक किया, बहुत कठिन है इसे पार करना, लेकिन माम एव ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में आना पड़ेगा। और मेरी शरण में आना पड़ेगा मतलब हृदय से बाकी सारी इच्छाओं को, वासनाओं को, कामनाओं को, जो बहिरंगा जो वस्तुएं हैं, जो उसकी अट्रैक्शन है, जो आसक्ति है, उन सब को छोड़कर जब मेरी शरण में आओगे तो बचाऊंगा तुम्हें। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे कि भगवान की इच्छा द्वारा जीव आत्मा इस बहिरंगा शक्ति से नियंत्रित होती है, अतः अपनी शुद्ध अवस्था में यद्यपि जीव आत्मा नितांत सचेत रहता है, किंतु भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा प्रभावित होने से वह भगवान की इच्छा के अधीन रहता है। अब यहाँ दो चीजें बता रहे कि शुद्ध अवस्था में तो जीव आत्मा सचेत है। शुद्ध अवस्था क्या है? जब जीव अपने वास्तविक अवस्था को, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्यदास, इस वास्तविक अवस्था को जब जानता फिर तो वो सचेत है, लेकिन भगवान की बहिरंगा शक्ति द्वारा प्रभावित होता है। जब वो चेतन नहीं रहता तो वो क्या करता है? भगवान की इच्छा के अधीन रहता है। और भगवान कहते हैं श्रीमद भगवत गीता 15.15 में भी इसकी इस तथ्य की पुष्टि की गई है। भगवान प्रत्येक जीव आत्मा के हृदय में स्थित है और जीव आत्मा की सारी चेतना तथा स्मृति भगवान द्वारा ही प्रभावित होती है। भगवान कहते हैं कि वे सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृते ज्ञानम अपोहनम च, मैं सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ, उनको स्मृति ज्ञान और भूल जाने की शक्ति भी मैं ही प्रभावित कर। तो जो कुछ भी है, जो कुछ प्राप्त हो रहा है वो भगवान के द्वारा ही प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसकी कामना जीव आत्मा करती है, क्योंकि जीव आत्मा भूल जाती है ना अपने वास्तविक स्वरूप को, भगवान के अतिरिक्त कहीं और आनंद जब ढूंढने लगती है तो भगवान उसे उसका मौका भी प्रदान करते हैं। और बहिरंग शक्ति के द्वारा जब वो बार बार इस दावानल अग्नि में झुलसते झुलसते जब थक जाती है, हार जाती है, पूरी रूप से पूर्ण रूप में भगवान की शरण ग्रहण कर लेती है, और उसके बाद जब भगवान उसे क्या करते हैं, उसे इस मृत्यु सागर से पार करके, इस बहिरंग शक्ति से पार करके अपने आध्यात्मिक जगत में ले जाते हैं। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, अब जो दूसरा प्रश्न उठता है वह ये है कि भगवान जीव आत्मा की चेतना तथा विस्मृति को इस प्रकार क्यों प्रभावित करते हैं। इसका उत्तर ये है कि भगवान की यह इच्छा है कि प्रत्येक जीव आत्मा भगवान के अंश रूप शुद्ध चेतना में रहे और भगवान की प्रेमा भक्ति में लगा रहे, क्योंकि वह स्वभावतः इसीलिए बना है। किंतु जीव आत्मा अंशतः स्वतंत्र भी है, अतः वह भगवान की सेवा करना नहीं भी चाहता है और भगवान की ही तरह स्वतंत्र रहने का प्रयास करता है। अभी यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही भगवान की करुणा का प्रदर्शन करते हैं कि कोई सोच सकता है कि भाई भगवान जो है, ये प्रश्न उठा सकता है कि भगवान जीव आत्मा की चेतना तथा विस्मृति को इस प्रकार क्यों प्रभावित करते हैं, क्यों बहिरंग शक्ति में जीव आत्मा को डाल देते हैं। तो उत्तर क्या दिया? उत्तर ये है कि जीव आत्मा भगवान के अंश रूप से शुद्ध चेतना में रहे और भगवान क्या चाहते हैं कि भगवान चाहते हैं कि जीव आत्मा का कल्याण हो। और कल्याण कैसे होगा? जब जीव आत्मा भगवान की प्रेमय भक्ति करेगी, है ना। एक ही हमारा कल्याण इसके अतिरिक्त और किसी चीज में, किसी वस्तु में, किसी जगह पर, किसी प्लैनेट में हो ही नहीं सकता कि हम भगवान की प्रेमय सेवा करें। इसके अलावा और कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई कार्य जीव आत्मा को आनंद दे ही नहीं सकता है। इस बात को कांट मानकर रख देना चाहिए कि हमारा आनंद किस में है? भगवान की प्रेमयी सेवा में। लेकिन जीव आत्मा को स्वतंत्रता दी जाती है। भगवान बताते हैं कि उसे किंतु जीव आत्मा अंशतः स्वतंत्र भी है ना, उसे स्वतंत्रता दी जाती है तो वो क्या करती है? भगवान की सेवा नहीं भी करना चाह सकता है, उसकी इच्छा नहीं होती है, वो सोचता है कि मैं भगवान की सेवा नहीं करूं बल्कि मैं क्या करूं, मैं आनंद का भोग करूं। जब जिस समय जीव आत्मा के मन में ये आ जाता है कि सेवा ना करके आनंद प्राप्त करना है, तो उसी समय वो फंस जाती है। इसे यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान वो सोचता है कि भगवान ही की तरह स्वतंत्र रहकर आनंद करने का प्रयास करें। समस्त अभक्त जीव आत्माएं भगवान के ही समान शक्तिमान बनना चाहती हैं, यद्यपि इस योग्य नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी क्या चाहती हैं? भगवान के समान शक्तिमान मतलब वो सोचती हैं कि भोग हम करें, हम हर एक जो संसार में जो चीज है वो मुझे आनंद प्रदान करे और मैं उसका भोग करूं, लेकिन वो योग्य नहीं है। भगवान की इच्छा से वे मोहग्रस्त रहती हैं क्योंकि वे उनके समान बनना चाहती हैं, जैसे कोई व्यक्ति आवश्यक पात्रता के बिना राजा बनना चाहे। उसी प्रकार जब जीव आत्मा स्वयं भगवान बनना चाहती हैं, तो वह स्वप्न अवस्था को प्राप्त होती हैं। अब यहाँ पर जो स्वप्न दर्शना ये जो शब्द बताया गया उसके विषय में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब वो जीव आत्मा सोचती है कि अब मैं भगवान बन जाऊं, तो क्या होता है? तो वो स्वप्न अवस्था प्राप्त करता है। स्वप्न अवस्था स्वप्न दृष्टुम रिवान जैसा। स्वप्न में क्या होता है वह श्री प्रभुपाद जी हमें समझाएंगे कि जिसमें वह अपने आप को राजा मानता है। अतः जीव आत्मा की पहली पाप पूर्ण इच्छा है कि वह भगवान बन जाए। फलस्वरूप भगवान की इच्छा होती है कि जीव आत्मा अपने वास्तविक जीवन को भूलकर स्वप्न लोक में विचरण करने लगे, जहां वह अपने को भगवान के तुल्य माने। अभी ऐसा भगवान क्यों करते हैं, है ना? जीव आत्मा की यदि इच्छा होती है कि मैं भोग करूं, मैं आनंद प्राप्त करूं, ये तो उसकी सबसे बड़ी भूल है, है ना? क्योंकि वो खुद आनंद करके आनंदित हो नहीं सकती, वो भगवान की प्रेममयी सेवा करके आनंदित हो सकती है। लेकिन फिर भी यदि वो स्वतंत्र है और ऐसा इच्छा करती है, तो भगवान उसे क्यों प्रोवाइड करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? उसके लिए श्रील प्रभुपाद जी बहुत बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। इसका कारण ये है कि भगवान के हृदय में जीव आत्मा के लिए बहुत स्नेह है, बहुत करुणा है, और उस करुणा के कारण भगवान ऐसा करते हैं। जैसे यहाँ श्री प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि बालक अपनी माता से चांद लाने के लिए हट करता है। क्या बोलता है? वो आसमान में चांद को देखता है, बोलता है मुझे ये चांद चाहिए, और माता उसका रोना बंद कराने के लिए उसे दर्पण दे देती है, है ना? चांद तो नहीं ला सकती, तो उसे दर्पण दे देती है कि देखो चांद आपके पास हो, जिससे वह चंद्रमा के प्रतिबिंब को देख सके। अतः भगवान अपने रोते हुए बालक को भौतिक जगत रूपी प्रतिबिंब प्रदान करते हैं, जिस पर कर्मी के रूप में वह निजत्व दिखाता है और ऊब कर इसका परित्याग करके ईश्वर के साथ एकाकार होना चाहता है। ये दोनों ही अवस्थाएं स्वप्न तुल्य मोह है। इसे जानने के लिए इतिहास को खोजने की आवश्यकता नहीं है कि जीव आत्मा ने सबसे पहले कब ऐसी इच्छा की, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ज्यों ही उसने ऐसी इच्छा की, वह भगवान के निर्देशन में माया के वशीभूत कर दिया गया। अभी यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी कितना सुंदर बता कि अब वो जीव आत्मा की इच्छा हो जाती है कि मैं भोग करूं, तो वो आध्यात्मिक जगत में तो भोग नहीं कर सकता, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में तो केवल भगवान का ही वो भगवान ही भोग करते हैं, बाकी सब वहां पर जो है वो भगवान, तो भगवान उनके लिए बहिरंग शक्ति का ये संसार क्रिएट कर देते हैं। ये जो संसार में हम आए हैं ना, ये भगवान के कारण नहीं आए हैं, बल्कि यहाँ भी जो हम भोग भोगने की इच्छा कर रहे हैं ना, उसके कारण है। एक बात हमेशा याद रखनी है, सफरिंग्स आर नॉट बिकॉज ऑफ गॉड। हम हमेशा अपने दुखों का कारण भगवान को घोषित करते हैं ना कि भगवान ऐसा कर रहे हैं, ये दुख भगवान के कारण नहीं है। सफरिंग्स आर बिकॉज ऑफ आवर फूलिशनेस, हमारी मूर्खता के कारण ये दुख है, क्योंकि हम अपने वास्तविकता को भूल जाते हैं, और हम भगवान के प्रेममयी सेवा को छोड़कर खुद आनंदित होना चाहते हैं, फिर भगवान भी बोलते हैं कि ठीक है, इसकी इच्छा यदि मेरी सेवा करने की नहीं है तो भगवान को बाई फोर्स सेवा करने की कोई इच्छा भी नहीं है। भगवान चाहते हैं प्रेममयी सेवा हो, और प्रेम कभी बाई फोर्स तो नहीं किया जा सकता। तो ठीक है, तुम नहीं रहना चाहते, जैसे कोई पत्नी हो वो अपने पति के साथ यदि प्रेम नहीं करती है और वो ये सोचती है कि मुझे इसके साथ प्रेम नहीं करना है, मुझे आजाद जिंदगी गुजारनी है, तो यदि पति को उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि पति को तो प्रेम चाहिए, तो वो क्या करेगा? ठीक है, तुम मेरे घर में मत रहो, है ना, मेरे घर में तो तुम तभी रह सकती हो जब तुम मुझसे प्रेम करो। अगर तुम्हारी इच्छा ये है कि तुम स्वतंत्र जीवन गुजारना चाहती हो तो दुनिया पड़ी है, जहाँ जाना चाहो चली जाओ, है ना। जब तुम्हें लगे कि मेरे अतिरिक्त और कहीं तुम्हें आनंद नहीं आ रहा, तब तुम मोस्ट वेलकम, वापिस आ जाना। तो भगवान कितने कितने कृपालु हैं, है ना। भगवान बाई फोर्स नहीं हमसे अपनी भक्ति करवाना चाहते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जानने की जरूरत नहीं है कि किस जीव आत्मा ने सबसे पहले कब ऐसी इच्छा की थी। क्या फर्क पड़ता है अगर पता चल जाए तो, कि पहली बार हम कब जन्म लिए थे, कब संसार में आए। किंतु वास्तविकता तो यही है कि जो ही उसने ऐसी इच्छा की वह भगवान के निर्देशन में माया के वशीभूत कर दिया गया, है ना। अतः भौतिक अवस्था में जीव आत्मा झूठा स्वप्न देखती है कि यह मैं हूँ और यह मेरा है। बद्ध जीव स्वप्नवश अपने भौतिक शरीर को मैं सोचता है अथवा अपने को झूठे ही भगवान मानने लगता है, और इस भौतिक शरीर से जो भी संबंधित है वह मेरा है। इस तरह मैं तथा मेरा की भ्रांत धारणा जन्म जन्मांतर तक केवल स्वप्न में ही बनी रहती है। जब तक जीव आत्मा अपने को भगवान की पराधीन अंश नहीं मानता, तब तक जन्म जन्मांतर ऐसा ही बना रहता है। जब तक, ये कितना पावरफुल सेंटेंस है जो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं, कि जब तक जीव आत्मा अपने आप को भगवान का पराधीन अंश नहीं मानता, तब तक जन्म जन्मांतर ऐसा ही बना रहेगा। ना जाने कितने करोड़ जन्म हो चुके हैं कि हम बार बार इस भौतिक धरा पर आते हैं और बहिरंगा शक्ति के इन झुलसते हुए अग्नि में झुलस रहे हैं। और अब तक हम अपने आप को कब स्वीकार करते हैं कि हम भगवान के पराधीन अंश हैं? कब हम भगवान संसार की आसक्ति को छोड़कर भगवान की आसक्ति को निर्माण कर पा रहे हैं? कब संसार के प्रेम से मुक्त होकर भगवान के चरणों में प्रेम को निर्धारित कर पा रहे हैं? तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बोलते हैं, तब तक जब तक भगवान का पराधीन अंश नहीं मानता है, तब तक जन्म जन्मांतर तक ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि प्रलय होने के बाद अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा थोड़ी होगा। वापस प्रलय के बाद तो सृष्टि का सृजन होगा और वापस आना पड़ेगा। कब तक अपने आप को यूं भटकाते रहेंगे हम? तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक ही तरीका है कि अपनी वास्तविकता को जाना जाए कि मैं भगवान का अंश हूँ और मुझे भगवान को प्राप्त करना है। इसी श्री प्रभुपाद जी कहते, किंतु शुद्ध चेतना में ऐसा भ्रांत धारणा युक्त स्वप्न नहीं रहता, और जीव आत्मा यह नहीं बोलता कि वह कभी भगवान नहीं बन सकता। प्रत्युत वह तो दिव्य प्रेममय अवस्था में उनका शाश्वत सेवक है। जब चेतना शुद्ध हो जाती है ना, तब जीव अपने आप को जानता है कि मैं कौन हूँ, भगवान का शाश्वत सेवक हूँ, मेरा कार्य केवल भगवान को आनंद देना है। जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तब जीव आत्मा स्वतः प्रसन्न हो जाती है। यही एक इंडायरेक्ट विधि है जीव आत्मा को आनंद देने की, बाकी शरीर को चाहे दुनिया भर की फैसिलिटीज दी जाए, दुनिया भर की लग्जरियस लाइफ भी दी जाए, जीव आत्मा संतुष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि जीव आत्मा को इन वस्तुओं की नहीं बल्कि भगवान की आवश्यकता है। जीव आत्मा तड़प रही है भगवान के प्रेम के लिए, ये जीव आत्मा का स्वभाव है ना, उसको सिर्फ और सिर्फ प्रेम करना ही आता है और उसको प्रेम करने की आवश्यकता है। जीव आत्मा को और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। हम हर एक वस्तु के बगैर जी सकते हैं, और ये भी बता दिया गया है, और ये अनुभव वालों ने अनुभव करके देखा कि किसी व्यक्ति को संसार की सारी उपलब्धियां हैं, सारी ऐशो अशरत, सारी लग्जरियस जीवन देकर उसको कहीं अकेला छोड़ दिया जाए कि सारा इतना बड़ा खूबसूरत बंगलो हो, उसके अंदर हर सुंदर से सुंदर वस्तु हो, बाग हो, खलियान हो, बागीचे हो, खाने पीने की हर एक वस्तु एकदम लग्जरियस स्वर्ग जैसा उसको माहौल बना के दे दिया जाए, लेकिन उसमें उसको अकेले रहने के दिया जाए कि तुम यहाँ पर अकेले मजा करो, अकेले आनंद करो, क्या उसके लिए संभव है? वो 2-4 दिन से ज्यादा नहीं रह सकता, क्योंकि जीव आत्मा को प्रेम के बगैर रहना नहीं आता, वो प्रेम खोजता है। जब जिस भी योनि में भी चला जाएगा ना, वो प्रेम ही खोजता है, उसको प्रेम के बगैर आनंद स्वतः ये जीव आत्मा की आवश्यकता भी है और जीव आत्मा की विवशता भी है। जीव आत्मा प्रेम के बगैर नहीं रह सकता है, तो जिस जिस तरह की कॉन्शियसनेस होती है उसी तरह से वो अपने प्रेम को डिवेलप करता है। यदि भौतिक कॉन्शियसनेस है तो भौतिक वस्तु और व्यक्तियों में वो प्रेम ढूंढता है। प्रेम तो ढूंढ रहा है ना, लेकिन अब उस कॉन्शियस ही इतनी है तो क्या करे, तो फिर उसकी कॉन्शियसनेस और ऊपर उठती है, फिर वो क्या सोचता है कि ये भौतिक वस्तुएं जो है वो मेरे प्रेम का केंद्र नहीं है। फिर वो कोई साधु ढूंढता है, कोई संत ढूंढता है, कोई वैष्णव ढूंढता है, उनकी ओर आकर्षित होता है। फिर उसको ऐसा लगता है कि मेरे प्रेम का केंद्र जो है वो ये भी नहीं है। फिर उसकी जब कॉन्शियसनेस और ऊपर उठती है तब वो भगवान से प्रेम करने लगता है कि मेरे प्रेम का केंद्र भगवान है। क्योंकि जब तक यहाँ तक नहीं उठेगा, कृष्ण कॉन्शियसनेस में जब तक नहीं आएगा, तब तक तो संसार में अपने और प्रेम को ढूंढे बगैर नहीं रह सकता। हम देखते हैं कि अगर कोई बहुत ही राजा की बेटी हो, वो अगर किसी बहुत ही गरीब व्यक्ति को पसंद करती है, उससे प्रेम करती है, तो फिर वो उसके लिए सब कुछ छोड़ सकती है, है ना? उसके लिए अपना घर, अपनी इतनी सुंदर जीवन को त्याग कर सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके हृदय में आता है कि भले ही वो मुझे सांसारिक सुख नहीं दे सकता, लेकिन वो प्रेम, ये प्रेम काफी है, ये जीवन को आनंद से गुजारने के लिए प्रेम पर्याप्त है, है ना? तब वो सबको छोड़कर अपने प्रेमी के पास आ जाती है ना, क्योंकि उसे ये तो भौतिक प्रेम जो है वो भौतिक शरीर पर ही टिका हुआ है, तो वो कभी ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता, लेकिन उसके अंदर से आवाज तो आती है कि प्रेम मेरे लिए काफी है। तो वास्तव में प्रेम काफी है, लेकिन वो किसी संसार की वस्तु या व्यक्ति का प्रेम नहीं, बल्कि वो कृष्ण का प्रेम। और भक्त तो कहता ही है, ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है, ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है, तू है तो हर सहारा है, एक तेरा प्यार, एक तेरा प्यार हमको तो जहाँ से प्यारा। तो केवल भगवत प्रेम जो है वो जीव को आनंदित कर सकता है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, किंतु शुद्ध चेतना में ऐसा भ्रांत धारणा युक्त स्वप्न नहीं रहता और जीव आत्मा यह नहीं भूलता कि वह कभी भगवान नहीं बन सकता, प्रत्युत वह तो दिव्य प्रेमय अवस्था में उनका शाश्वत सेवक हो जाता है। फिर वो अपनी वास्तविकता को समझ जाता है कि मैं भगवान का दास हूँ और मुझे भगवान से प्रेमय सेवा करनी है, उसी में मुझे आनंद आएगा। तो हमको जो ये मनुष्य जीवन मिला है वो इसीलिए मिला है कि हम अपनी चेतना को शुद्ध करें और इस भ्रांत धारणा से बाहर निकलें कि हम स्वामी हैं, हम भोक्ता हैं। क्योंकि जब तक हम भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा की अवस्था में भगवान के सेवक नहीं बनेंगे, तब तक तो ये जन्म मरण का चक्कर बनता रहेगा और एक ही योनि नहीं, अलग अलग योनियों में हमको भटकना पड़ेगा। उसके विषय में यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बहुत ही सुंदर रीति से समझा रहे हैं श्लोक नंबर 2 में। कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए।
बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया रममाणो गुणेश्वरस्य ममाह मिति मन्यते। बहुरूप इवा भाति मायया बहुरूपया रममाणो गुणेश्वरस्य ममाह मिति मन्यते। बहुरूप इवा भाति, बहुरूप मतलब विविध रूपों वाली, बहुत सारे रूपों वाली। इवा मानो आभाति मतलब प्रकट होता है। अब माया के अंदर जब जीव फंस जाता है तो उसको अलग अलग रूप धारण करने पड़ते हैं। और मायया बहुरूपया, मायया मतलब बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से, बहुरूपया मतलब विविध प्रकार के अनेक रूपों में। रममाणो गुणेश्वरस्य, रममाण अर्थात मानो रमण करता है या भोग करता है, उन्हीं अलग अलग रूपों में गुणेशु विभिन्न गुणों में अस्य बहिरंगा शक्ति का। ममाह मिति मन्यते, वो क्या मम मतलब मेरा, अहम यानी मैं, इति मन्यते, जैसा रूप मिलता उस रूप के अंदर जो वस्तु और व्यक्ति मिलते हैं उस रूप को मेरा समझता है और उस वस्तु और व्यक्ति को मैं, रूप को मैं समझता है, व्यक्ति और वस्तु को मेरा समझता है। ममाहम इति मन्यते। अनुवाद, मोहग्रस्त जीव आत्मा भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा प्रदत्त अनेक रूप धारण करता है। जब बद्ध जीव आत्मा भौतिक प्रकृति के गुणों में रम जाता है तो वह भूल से सोचने लगता है कि यह मैं हूँ और यह मेरा है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जीव आत्मा के विभिन्न रूप भगवान की मोहमयी बहिरंगा शक्ति द्वारा प्रदत्त विभिन्न प्रकार के वस्त्र हैं। जिस भी शरीर को आप प्राप्त करते हो, भगवान भी बोलते हैं कि ये मैंने वस्त्र दिया है, ये आत्मा का वस्त्र है। जो जीव आत्मा के द्वारा भोगे जाने वाले वांछित गुणों के अनुसार होते हैं, कैसी आपकी इच्छा होती है, कैसे आपके कर्म होते हैं, उसी के अनुसार आपको वस्त्र दिया जाता है। जैसे इस जीवन में भी आप मार्केट में जाते हो ना, तो आप कौन सा वस्त्र लेते हो? वस्त्र तो आपको बहुत सारे मिलते हैं, मार्केट में वैरायटी बहुत होती है, लेकिन आप केवल वही ले सकते हो जिसके लिए आपने पूरा धन एकत्रित किया है, है ना। अगर आप मार्केट जाते हो, आपको 10,000 वाली ड्रेस पसंद आती है और आपके पास 1,000 है, तो आप क्या करोगे? 10,000 वाले के लिए तो आपके पास पैसे ही नहीं है, जितना आपने जमा किया उतने का ही ड्रेस ले सकते हो। उसी तरह से एक जन्म में आपने जितने कर्म किए होंगे ना, उसी के कर्मों के अनुसार आपको दूसरा शरीर मिलेगा। ये जो आज हमको शरीर मिला है ना, वो सबसे ज्यादा महंगा है। इधर इसको बोलते हैं दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म सबसे कीमती है। देवा अपि, जो देवता है ना वो भी इसकी आकांक्षा करते हैं। लेकिन अब इस शरीर को पा लेना ही पर्याप्त थोड़े है, इस शरीर को पा लेने के बाद हमारे कार्य क्या है, उस कार्य के अनुसार तो हमको आगे जो भी मिलने वाला होगा वो मिलेगा। इसी श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो जीव आत्मा के द्वारा भोगे जाने वाले वांछित गुणों के अनुसार है, बहिरंगा भौतिक शक्ति तीन गुणों यानी सत्व रजो तथा तमो गुण द्वारा प्रकट होती है। इस प्रकार प्रकृति में भी जीव आत्मा के लिए चुनाव करने की स्वतंत्रता रहती है और उसके चुनाव के ही अनुसार बहिरंगा शक्ति उसे विभिन्न प्रकार का शरीर प्रदान करती है। चुनाव करता है वो कि मुझे कैसा जीना है। वो जीव आत्मा जो है, क्योंकि अपनी रियल स्थिति तो उसकी क्या है, भगवान की सेवा करना, भगवान के साथ प्रेम करना, वो तो छोड़ के आ गया। अब चुनाव उसे करना है कि उससे क्या करना है, फिर बहिरंगा शक्ति उसे वैसा ही शरीर प्रदान करती है। इस तरह श्री प्रभुपाद जी कहते हैं 9 लाख प्रकार के जल जीव है, है ना, 9 लाख प्रकार के जलजा नव लक्षणी स्थावर लक्ष्य विशंति 20 लाख प्रकार की वनस्पतियां जीव है, कृमिया रुद्र संख्या 11 लाख किस्म के कीड़े मकोड़े तथा सरीसृप हैं जो रेंगते हैं, 10 लक्षणी पक्षीणम पक्षी जो हैं उड़ने वाले वो 10 लाख प्रकार के हैं, 30 लक्षणी पशुणम 30 लाख किस्म के विभिन्न जंगली पशु तथा चतुर लक्षणी मनुष्य मानव रूप 4 लाख किस्म के हैं। इस प्रकार ब्रह्मांड के समस्त लोकों में 84 लाख प्रकार के जीव योनिया पाए जाते हैं और जीव आत्मा अपने भीतर विभिन्न गुणों में रमने वाले आत्मा के अनुसार अनेक देहांतरों द्वारा घूमता रहता है। अब जीव आत्मा जिस जिस वस्तु का आनंद लेना चाहता है ना, इस भौतिक जगत में आया है, भगवान की सेवा तो नहीं करना चाहता, तो फिर वो अलग अलग योनियों में जाकर घूमता है, उसमें वो आनंद ढूंढता है। और आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ तक कि एक ही शरीर में जीव आत्मा बालपन से लड़कपन तथा लड़कपन से युवावस्था, फिर युवावस्था से बुढ़ापा और बुढ़ापे से अपने कर्म के अनुसार अन्य शरीर में परिवर्तित होता है। जीव आत्मा अपनी निजी इच्छा से शरीर कल्पित करता है और बहिरंगा शक्ति उसे वह रूप प्रदान करती है जिसका वह पूरी तरह से भोग कर सके। अभी यहाँ तो शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जीव आत्मा की जो इच्छा होती है उसके अनुसार उस गुण के द्वारा वो ऐसा ही अपना आचरण बनाता है और ये बहिरंगा शक्ति क्या करती है, उसे सुविधा प्रदान करती है कि ठीक है तुमको ऐसे आनंद प्राप्त करना, तो ये वाला आनंद प्राप्त करने के लिए ये वाला शरीर जो है वो बहुत ज्यादा स्वीटेबल है, तो तुम ये वाला शरीर धारण कर लो। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीव आत्मा अपनी निजी इच्छा से शरीर कल्पित करता है और बहिरंगा शक्ति उसे वह रूप प्रदान करती है जिसका वह पूरी तरह से भोग कर सकता है। अब वो कैसे होता है, शिला प्रभुपाद जी एग्जांपल देते हैं कि चीते की इच्छा अन्य पशु का रक्तपात करने की थी, अतः बहिरंगा शक्ति ने उसे सुविधा संपन्न चीते का शरीर प्रदान कर दिया जिससे वह अन्य पशुओं का रक्तपान कर सके। इस प्रकार जो जीव आत्मा उच्च लोक में देवता का शरीर पाना चाहता है उसे ईश्वर की कृपा से वैसा ही शरीर मिल सकता है और यदि वह बुद्धिमान है। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं आपको क्या करना है, उसके लिए बहिरंगा शक्ति आपको वैसा ही शरीर प्रदान कर देती है। आप बस खाली इच्छा करो, कितने करुणामयी है भगवान। एक बार क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद जी एक जगह पर लेक्चर दे रहे थे तो वहां पर बहुत सारे मच्छर थे, मच्छर आ रहे थे बार बार तो डिस्टर्ब कर रहे थे। फिर श्रील प्रभुपाद जी ने अचानक से बोल दिया, बोले ये सारे जो यहाँ पर मच्छर घूम रहे ना ये पहले जन्म में वकील थे। तो सब हैरान हो गए, बोला वकील क्यों, बोला वकील दूसरों का खून चूसते है ना, तो भगवान ने बोला होगा कि अभी मनुष्य जीवन तो खून चूसने के लिए नहीं मिला है, मनुष्य जीवन तो भगवत प्राप्ति करने के लिए मिला है,
तो इनको अगर खून ही चूसना है तो इनको मच्छर बना देता हूँ। तो देखो कितनी बड़ी बात है ना, कि एक ना व्यक्ति जो मनुष्य जीवन प्राप्त करता है उसके बाद उसकी जो कामना, जो आकांक्षाएं हैं, जो उसकी हवस है, वो उसकी आसक्ति है, जो उसके कर्म है, वो उसे मच्छर बनाने पर विवश कर देते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं, आपकी इच्छा के अनुसार बहिरंगा शक्ति आपको दूसरा शरीर प्रदान करती है। यदि कोई देवता बनना चाहता है तो देवताओं की पूजा करके वो स्वर्ग में जाकर देवता भी बन सकता है, उसका भी विधि विधान है। और अंत में जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यदि वह बुद्धिमान है तो भगवान के साहचर्य के लिए आध्यात्मिक शरीर पाने की इच्छा कर सकता है और उसे वह प्राप्त हो जाता है। ऐसा बहुत ही दुर्लभ है इस जीवन में कि सारी इच्छाओं को छोड़कर केवल भगवत इच्छा करके भगवान का सानिध्य प्राप्त करने का प्रयास किया जाए। भगवान भक्त के लिए भगवान सुलभ है। भगवान कहते हैं तस्याम सुलभ पार्थ, जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। भगवान तो भक्त के लिए बहुत सुलभ है, लेकिन भक्त भगवान के लिए भी दुर्लभ है। भगवान कहते हैं समात्मा सुदुर्लभ, मुझे वैसा व्यक्ति बहुत कम दिखता है जो कि अनन्य सिंधयंतो मम, जो केवल मेरा चिंतन करता है। वासुदेव सर्वम इति समात, जिसके जीवन में मेरे अतिरिक्त तो और कोई गोल नहीं है, मेरे अतिरिक्त तो और कोई इच्छा नहीं है, मेरे अतिरिक्त तो और ना किसी के अंदर आसक्ति है, ना किसी के अंदर प्रेम है और ना ही कुछ और प्राप्त करना चाहता। भगवान कहते हैं मेरे लिए भी मेरा भक्त बहुत दुर्लभ है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, लेकिन फिर भी यदि कोई ऐसी इच्छा करता है तो वो तो भगवान के साहचर्य के लिए आध्यात्मिक शरीर पाने की इच्छा कर सकता है और उसे वह प्राप्त हो जाता है। अतः जीव आत्मा को जो थोड़ा बहुत स्वतंत्रता प्राप्त थोड़ी बहुत स्वतंत्रता प्राप्त है उसका उपयोग पूर्ण रूपे न किया जा सकता है। और ईश्वर इतने दयालु हैं कि वह मनुष्य को इच्छित शरीर प्रदान करते हैं। जीव आत्मा की इच्छा पूर्ति सुनहले पर्वत का स्वप्न देखने के समान है। मनुष्य जानता है कि पर्वत क्या है और वह यह भी जानता है कि स्वर्ण क्या होता है, किंतु मात्र इच्छावश वह सुनहले पर्वत का सपना देखता है और जब सपना टूटता है तो अपने सामने कुछ और ही पाता है। उसके समक्ष ना तो सोना होता है ना पर्वत, सुनहले पर्वत की बात तो कोसों दूर हो जाती है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये सब तो जो कुछ आपको मिल रहा है इस भौतिक जगत में वो सिर्फ और सिर्फ सपना है। कावनानिक थिर किछ नहीं सुपने दिव संसार, जिसको हम मेरा 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 कहते हुए थकते नहीं है ना, वो कुछ नहीं है, केवल एक सपना है। जो जिनके लिए मर रहे होते हैं ना, वो कुछ नहीं है, केवल हमारी आकांक्षाओं के कारण हमको वो सब आसक्तियां इस बहिरंग शक्ति के द्वारा दी गई हैं। ये इसमें से ना कुछ, ना हम कुछ हैं और ना ही हमारा कुछ है, हम आत्मा हैं। आत्मा का संबंध केवल भगवान के साथ है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जब आंख खुलेगी, सपना टूटेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि ना तो कोई पहाड़ था और ना ही कोई सोना था, बहुत दूर की बात है, कुछ भी नहीं पाओगे अपने आगे। सपना टूटेगा तो याद आएगा कि ये सब सपना था, केवल कृष्ण ही अपना था। तो आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भौतिक जगत में जीव आत्माओं की विभिन्न स्थितियां विविध शारीरिक रूप में मैं तथा मेरा भ्रांत धारणाओं के कारण है। कर्मी इस जगत को मेरा रूप में सोचते हैं और ज्ञानी सोचता है कि मैं ही सब कुछ हूँ। कर्मी क्या सोचते हैं कि ये मेरा वो मेरा वो मेरा, और ज्ञानी क्या सोचते हैं, मैं सब कुछ मैं ही हूँ। राजनीति, समाज विज्ञान, परोपकार और परार्थवाद आदि की सारी धारणा बद्ध जीवों की इसी मैं तथा मेरा की भ्रांत धारणा पर आधारित है।
जो कोई भी संसार में है वो बस ऐसे ही है कि मैं और मेरा पर आधारित है, जो भौतिक जीवन के भोग का भोग की प्रबल इच्छा से जन्य है। समाजवाद, राष्ट्रवाद, पारिवारिक प्रेम आदि विभिन्न विचारधाराओं के अंतर्गत शरीर और शरीर के जन्म स्थान से आत्मा का संबंध मानना जीव आत्मा द्वारा असली स्वभाव के भूल जाने के कारण है ना। शरीर और शरीर के जन्म स्थान से इस शरीर से अपना संबंध, मेरा संबंध है, मैं ये शरीर हूँ या इस ये मेरी जन्मभूमि है और ये मेरा शरीर के जो संबंधी हैं वो सब क्यों है? क्योंकि जीव आत्मा द्वारा असली स्वभाव, अपना वास्तविक स्वभाव भूल गई है। मोहग्रस्त जीव आत्मा की यह सारी भ्रांत धारणाएं सुखदेव गोस्वामी तथा महाराज परीक्षित की संगति करके ही दूर की जा सकती हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा जा चुका है। तो ये सब जो भ्रांत धारणा है कि हम अपनी वास्तविकता को भूल गए हैं और इस संसार में बहिरंगा शक्ति के कंट्रोल में रहकर इस शरीर को हम हमारा सोचते हैं और शरीर से रिलेटेड व्यक्ति और वस्तुओं को अपना सोचते हैं, तो ये सबसे बड़ा अज्ञान है। और ये कैसे खत्म होगा? जब हम श्रीमद् भागवतम महापुराण यानी सुखदेव गोस्वामी और महाराजा परीक्षित के संगति करेंगे और उनके इन वचन अमृत को धारण करेंगे, तो अवश्य हमारी ये कुबुद्धि कि मैं ये शरीर हूँ और इस शरीर के द्वारा मुझे आनंद प्राप्त करना है, भौतिक आसक्ति, वो धीरे 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 समाप्त हो जाएगी। आप सबका बहुत बहुत आभार। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूँ। हरे कृष्ण।